प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भाई फ्रैंक ज्यूरिख से के साथ हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद हो, हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इस समय में रखा जो फजल का अनुग्रह का समय है। पर हम ये देख सकते हैं कि हम इस वक्त के आखिरियत यानी अंतिम समय में पहुंच चुके हैं। हम बड़े धन्यवाद से हमारे दिल भरे हुए हैं क्योंकि वो सारी की सारी रोशनी हमको मिल चुकी है। और ये वह इस वक्त का जो कलाम है, जो वचन है, वो हमारे लिए चिरागदान का काम कर रहा है। और ये कितनी अच्छी बात है कि हम चुने हुओं में से हैं जो कि सिर्फ खुदा के कलाम को सुनते हैं कि आत्मा कलीसियाओं से क्या करता है, क्या कहता है। और प्रभु ने सब कुछ कर दिया और उसने हमारे पास वो संदेश वाहक यानी कि वो नबी भेज दिया और उसने हमें सफाई, पूरी सफाई से अपने वचन को समझा दिया है। हम बड़े धन्यवादी हैं क्योंकि हम उस अलगाव और बदलाव दोनों में कामिल हुए। और ये वक्त आ चुका है कि सारी चीजें बहाल हो जाएंगी अपनी वापसी में, पुरानी अवस्था में, पुराने और जो नए नियम की कलीसिया है पूरे तौर पे बहाल हो जाएगी। कितनी अद्भुत बात है कि खुदावंद ने खुद कहा और खुदावंद खुद इस चीज की केयर करता है और उसने अपनी सामर्थ को हम अपने लोगों के बीच में भेजा है। और हमारे दिल की यही इच्छा है कि हम खुदावंद के इस कलाम को, वचन को पूरा होते हुए और पूरा कंप्लीट होते हुए अपने सामने देख सकें और वो हमारे को अपने आप से, हमारे से अपना परिचय करा ले। और ये वही है जो कल, आज और हमेशा हमेशा तक एक सा है। और उसने हमें ऐसा करने के बारे में हमारा वादा किया है। और मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं दो वचन पढ़ना हूं। पहला पत्रस पांच और आठ से ग्यारह। पहला पत्रस पांच और आठ से ग्यारह। सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में बने रहो, ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग बना रहे। आमीन। आमीन। और दूसरा कलाम पढ़ूंगा मैं, इफिसियों छ और दस से अठारह। इफिसियों छ 10 से 18। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको, क्योंकि हमारा ये युद्ध जो है, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं पर उन प्रधानताओं और अधिकारियों से है जो इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उसकी दुष्टता आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार मान लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, कायम रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की नीलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर सिर रहो, जिससे कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और इसके बाद इसी की 24 आयत, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे, फजल होता रहे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे मन धन्यवाद से भरे हुए हैं और तेरे इस खास वचन के लिए, कलाम के लिए और कभी ना फेल होने वाले इस कलाम के लिए। और आसमान और जमीन तो टल जाएंगे पर तेरा वचन, तेरा कलाम स्थिर रहता है, कभी ना टलेगा। वही हमारे पैरों के लिए रोशनी और दीपदान है। हे प्रभु, तूने हमसे अपना वचन दिया, अपना कलाम दिया और तू जो कि वादे तूने किए और आशीषें तूने जिनका वादा किया और जो कलाम हम सुनते हैं वो सब पूरा होता है। और हम पढ़ा और हम इस नबूवत वाले वचन के लिए, भविष्यवाणियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारी तैयारी के लिए हमको बख्शी हैं। और हे प्रभु, हम रैप्चर में शामिल होना चाहते हैं प्रभु, हम चाहते हैं और हम इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि हम एक ऐसी परफेक्शन पर आ जाएं, कामलियत पर आ जाएं, संपूर्णता पर आ जाएं, जिससे कि हम में ऐसा संपूर्ण विश्वास पैदा हो जाए जो हमें रैप्चर में ले जा सके। हमें संयम और धीरज में रख और हम ताकते रहें और हम जिससे कि हम शैतान से टक्कर ले सकें, उसका सामना कर सकें विश्वास के द्वारा। हे प्रभु, हम ये सारे की सारा जो ये हमारा जो हमारे ऊपर जो सारा हथियार, सारा सामान हम लाद सकें जिससे कि हम सामना कर सकें और हमें ऐसी सामर्थ्य दे और हमें धाड़स दे और हमें स्थिर रखे। हमारे भाई को, हमारे भाई फ्रैंक को भी तू, जिन्होंने की इस लड़ाई को भली प्रकार से लड़ा है और उन्होंने अब तेरे वचन को हम पर हमारे सामने रखा और आज भी जो रखने वाले हैं जैसी आज्ञा तूने दी है प्रभु, हम सबको तू आशीष दे और अपनी अनुग्रह से, अपने फजल से मामूर कर और सिर्फ तेरे को ही सारी महिमा और आदर और वर्शिप तेरे को ही मिले। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। और मैं भाई फ्रैंक भी आप सबको बड़े अच्छे मन से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ भाई फ्रैंक। और ये प्रभु का बहुत फजल और अनुग्रह है कि हम इस ट्रांसमिशन के द्वारा एक दूसरे को सुन सकते हैं और हम हमारी आवाज सारे संसार में सुनी जा सकती है। और जो आज ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं, वो इस चीज को अनुभव कर सकते हैं और वो उस दिन के लिए, उस महिमामय दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं जो प्रभु का दिन है। हमने खुदावन के कलाम को सुना और उसके बाद ये कितना अद्भुत और कितना अच्छा वचन है कि खुदा ने, प्रभु ने हर चीज का ख्याल हमारे लिए रखा। उसने हमें सब कुछ बताया और उसने सब कुछ समझाया कि जो कुछ होने वाला है और जिससे कि हम उस पर ईमान रख सकें। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और हमें धीरज रखना है और हमें ऊपर से जो सामर्थ और कुवत मिलनी है उसकी तरफ हमें ताकना है, जिससे कि हम शैतान की उन ताकतों का सामना कर सकें। हम सब जानते हैं कि सारा संसार दुष्टता से, बुरी चीजों से भरा हुआ है और शैतान और ये धोखा देने वाला है, ये धोखेबाज है और ये सारी दुनिया को धोखे में रख रहा है, भ्रम में रख रहा है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में, मकाशवा में लिखा है, और उसी तरह से हम जानते भी हैं कि शैतान और उसके पास वो, उसके अंदर एक बदले की भावना है। जो विश्वासी लोग हैं, ईमानदार हैं, उनसे उसके लिए एक बदले की भावना रखता है। हम खुदावन के बड़े धन्यवादी हैं कि उसने अपने सारे वादों को पूरा किया जो उसने किए हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है और वो सारे दिनों में, सब समय में वो हमारे साथ है और यहाँ तक के इस संसार के अंत तक जो उसका वादा है वो हमारे साथ है। और अब हम उस समय के बहुत करीब आ चुके हैं जो कि दुनिया का आखिरियत का समय है और हम अंत के समय में हैं। और हम खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उसने एक संदेश हमको भेजा, एक अपना कलाम हमको भेजा जो कि उसकी दूसरी आमद से पहले की हमको तैयारी कराता है। और वो है, इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत खास है कि हम इस बात को समझें कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या वादे किए हैं, इस वक्त के लिए उसने कौन से वादे हमारे लिए मुकर्रर किए हैं। जैसा कि पवित्र वचन में कहा गया है कि क्योंकि बाइबल की जो नबूवतें हैं, भविष्यवाणियां जो पुराने नियम और नए नियम में पाई जाती हैं, इसी प्रकार से प्रभु जो है वो बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं, नबूवतें हैं, उनको समय आने पर अपने हिसाब से पूरा करता है, कर रहा है। और हम ऐसे समय में रह रहे हैं जो नबूवतों का, भविष्यवाणियों का समय है। और हम कुछ वचन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। मेहरबानी से बार बार जो अभी जो वर्ड पढ़ा गया, जो खत पढ़ा गया इफिसियों और पत्रस का, उसको बार बार पढ़ें और दुआ करें कि खुदावंद आप सबको आपके साथ रहे और ऐसा ईमान रखें कि वो उन सारी बातों को, अपने वादों को जरूर पूरा करेगा और हमारे साथ रहेगा और हमारे को ताकत देगा, सामर्थ देगा चलने की, और ऊपर से, आसमान से हमको ये ताकत भेजेगा। अब हम कुछ वचन और पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं रोमियो एक और पहली और दूसरी आयत, रोमियो एक और उसकी पहली और दूसरी आयत। पौलुस की और जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया जिसकी उसने पहले से ही भविष्यवाणियों नबूतों के द्वारा अपने कलाम में लिखवाया। हम इस आयत पर रुकते हैं कि खुदावंद के द्वारा बुलाया गया और एक प्रेरित यानी एक रसूल खुदावंद के लिए बुलाया गया और उसको एक काम दिया गया, सेवा दी गई कि उसको प्रचार करना है, जिस जो के सच्चे सुसमाचार को प्रचार करना है। और भाइयों और बहनों, इस बात को दिल से लगा लें, एक बार दिल से लगा लें जो पौलुस कह रहा है, कि जो इस शुरुआत में कह रहा है, जो पहले खत में कह रहा है और वो ये कह रहा यहाँ पर कि उसको सुसमाचार का प्रचार करना है, जो खुदावन ने पहले से बताया था, जो खुदा ने नबियों को पहले से ही पुराने अहदनामे में बता दिया था। और वही आज्ञा आज हमको भी दी गई है कि हम कलाम में वापस जाएं और उन्हीं चीजों के बारे में बताएं जो खुदावन ने अपने कलाम में कही है। आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ते लूका 24 और 26 और 27 आयत। लूका 24 26 और 27 26 और 27 लूका 24 26 और 27 क्या ये जरूरी नहीं था कि यीशु मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे, तब उसने मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सारे कलाम में से अपने बारे में लिखी हुई बातों का मतलब उन्हें समझा दिया। देखिए कितनी अद्भुत बात है। और भाई और बहनों, मैं कह रहा हूं जहां पर नबी, चाहे वो नबी हो चाहे वो रसूल हो या हमारा प्रभु हो, यह हमेशा ऐसा होता है जो बताया जाता है, जिसके बारे में कलाम में लिखा है उसी का प्रचार किया जाता है। और मैं बड़ा खुश था ये देखकर कि प्रभु की पहली आमद पर 54 नबूतें जो पुराने अहदनामे की थीं, वो पूरी हो गईं, वो कामिल हो गईं नए नियम में प्रभु के आने पर। और ये कितनी अद्भुत बात है। और देखिए शुरू से लेकर और आखिरी तक, देखिए जहां पर हमारे प्रभु की पैदाइश से लेकर उसके स्वर्गारोहण यानी आसमान में उठाए जाने तक 54 भविष्यवाणियां 54 नबूतें पूरी हुई हमारे प्रभु में और हमारे प्रभु के साथ पूरी हुई। खुदावन सारे काम अपने कलाम के मुताबिक, सारी पाक कलाम के मुताबिक सारी बातें पूरी करता है। और हमारा काम ये बनता है कि हम कलाम में खोजें और फिर इस चीज को समझें और ईमान लाएं कि खुदावंद ने अपने कलाम में क्या लिखा है, क्या कहलवाया है। अगर हम महमाल उसके पहले बाद प्रेरितों एक पहले बाब में जाएं, जहां पर लूका ने डायरेक्ट बोला है और उसने ये बताने की कोशिश की है कि क्या हुआ था हमारे प्रभु के साथ, क्या हुआ था। और हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उसके लूका के आखिरी बाब में, और वो उन बातों के बारे में बता रहा है कि जो खुदावंद के बारे में लिखा गया था उसके बारे में बता रहा है और वो पूरा हुआ। और जो कुछ उसने बताया था अपने खुदावन ने अपने बारे में जो बताया था वो सारा कुछ पूरा हुआ था, और उसने उनकी अगुवाई करी थी उन कलाम की बातों को उन्हें समझाने में। और खुदावन आज भी वैसे ही कर रहा है, वही कर रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूं और पहले भी कह चुका हूं और मैं फिर कह सकता हूं कि ज्यूरिक से आज फिर कह सकता हूं, सबसे ये कह सकता हूं, सारी दुनिया में सब जगह कह सकता हूं, जब पौलुस ने ये रोमियों के 16 बाब लिखे, अध्याय लिखे, चैप्टर लिखे, तब उसने ये बताया, और उसने 67 यानी 67 बारी पुराने नियम के बारे में, पुराने अदनामे के बारे में बताया और उनका मेल कराया उन बातों के साथ जो खुदावन ने पहले से बताई थी। और उसने, खुदा ने अपने नबियों से जो पुराने अदनामे में कहा था उन बातों से उनका संबंध कराया, मेल कराया। और क्या क्या नए नियम में, नए अदनामे में पूरा हुआ उसके मुताबिक। हम खुदावन के बड़े धन्यवादी हैं, आभारी हैं अपने दिलों से, सच्चे दिलों से, कि हमें जो अतनाजियो और पॉलीकार या कॉन्स्टेंटाइन या किसी और ने कहा नहीं, पर जो खुदावन ने कहा उसने अपने नबियों के द्वारा जो कहा उस बात को हम समझते हैं, उस बात को मानते हैं, और जो लिखा गया हमारे लिए और जो हमारे पास पुराने और नए अहदनामे में इस बाइबल में मौजूद है, खुदावन का बहुत शुक्र है, बहुत धन्यवाद हो उसके कलाम के लिए। और हम आगे पढ़ते हैं, हम यूहन्ना 14 और दूसरी और तीसरी आयत, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के जगह हैं, स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आमीन, आमीन। कितना अद्भुत और खास कलाम अभी हमने पढ़ा, जिसमें एक वादा है कि हमारा प्रभु हमारा बचाने वाला, उसने हमारे लिए एक जगह तैयार करी है, और वो फिर आएगा और हमको आकर अपने साथ ले जाएगा। यहाँ पर इस धरती पर हम तो एक मेहमान हैं, एक अजनबी लोग हैं, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो आसमानों में पाया जाता है, जहां पर दुख, मुसीबत और कष्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं होता वहां इस नाम से। और प्रभु ने हमारा उद्धार कर दिया, हमें नजात दे दी है, उसने ये जरूरी समझा और उसने कर दिया कि जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं, नजात पाए लोग होंगे, वो उसके साथ होंगे। और जो आखिरी संदेश है, जो अभी जा रहा है, जो अभी बताया जा रहा है, वो इसलिए, उसका मकसद ये है कि सब उन विश्वासियों को, ईमानदारों को, सारे डिनोमिनेशन, संप्रदायों और शिक्षाओं में से बाहर निकाले और उनको खुदावन के इस खालिस कलाम में वापस लेकर आए और बहाल करे, क्योंकि इस समय जो फजल का वक्त है, ये कलीसिया जो है ये तैयार हो जाए और खड़ी हो जाए, जैसे कि खुदावन ने शुरू में किस मकसद से इसको खड़ा किया था, और जैसे इसलिए हमको ये बार बार कहने की जरूरत होती है और हर एक सरमन में कहने की जरूरत हो कि खुदावन खुदावन ने एक नबी हमारे लिए भेजा हमारे वक्त में हमारे समय में, और हमने इस बारे में ये बताया कि जो नया नियम है नया अहदनामा है वो बाइबल की बहुत सारी नबूवतों जो पुराने अहदनामे में पाई जाती हैं वो पूरी होती हैं, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी एक वादा किया हुआ नबी था, और खुदावन ने इस बात की भविष्यवाणी करी और उसकी पैदाइश के बारे में बताया गया अद्भुत तरीके से, और वो जकरिया के पास आया और उसने अपने संदेश वाहक को मैसेंजर को भेजा जकरिया के पास, और ये वहां से इसकी शुरुआत हुई। ये कितने अद्भुत तरीके से खास तौर पे ये बात शुरू की गई, जिससे कि वो खुदावन के जो वादे थे वो जो वाचाएं थे वो वेदी पर दीपदान पर रखी गई, और हमें बताया गया जैसा कि प्रभु ने शुरू किया उसी प्रकार से खुदावन उसको कामिल भी करेगा संपूर्ण भी करेगा। खास तौर पर जैसे मत्ती 17 में कहा गया, जब शिष्यों ने चेलों ने खुदावन से पूछा कि याजक लोग क्यों कहते हैं कि एलिया पहले आएगा, हमारे प्रभु का जवाब था बिल्कुल साफ साफ था कि एलिया जरूर जरूर आएगा और सारी चीजों को बहाल करेगा। ये वो वादा है जो मलाकी के द्वारा मलाकी 4 में इस वादे को किया गया, पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था उसको मलाकी 3 के अनुसार उसके बारे में बताया गया था, उसकी भविष्यवाणी की गई थी, जिससे के चेलों को ये बात पता लग जाए कि ये जो कलाम है ये पूरा हो चुका है और एलिया तो आ चुका है। हम कितने धन्यवादी हैं इस बात के लिए कि शुरू से हमारे खुदावन ने इस सही जवाब को हमारे समय में सही समय पर ये सारी चीजें अपने कलाम में बताई। आज हम प्रभु के सच्चे चेले कहलाते हैं, अनुयायी कहलाते हैं, और हम प्रभु की उस पाठशाला में उस स्कूल में पाए जाते हैं और प्रभु के इन आत्मिक बातों को सुनते हैं, और उसने उन सारे वादों को सारी वाचाओं को हमारे जीवन में पूरा किया, और एलिया के समान उसने एक मनुष्य को भेजा जिससे कि उस महान और भयानक दिन के आने से पहले वो हमारे पास वो नबी आए और हमने देखा, और हम बिल्कुल सफाई से जानते हैं और कह सकते हैं कि ये हमारे लिए कह देना काफी नहीं है कि जो बताया गया कि जो सुधार के समय से जो प्रचार किया गया मार्टिन लूथर और जो दूसरे थे स्विंगली और कैल्विन और जो भी थे उनको अपनी बुलाहट थी, पर वो सुधारक थे, वो सुधार करने वाले थे, वो नबी नहीं थे। लूथर एक प्रॉफिट नहीं था, वेस्ले एक प्रॉफिट नहीं था, जॉन स्मिथ एक नबी नहीं था, ये थे स्थापना करने वालों के अलग अलग कलीसियाओं के संस्थापक थे, ये प्रचारक थे जिन्होंने इस बात का प्रचार किया कि जो खुदा ने उस समय उनको बताया और समझाया, और बहुत सारे और उनमें से कई लोगों को तो ये मुकाशवा भी नहीं था कि जो पहला कलाम था वो क्या था, और हम इस बात को मान लें और जान लें कि खुदावन का एक खास आदमी जिसने के ईमानदारों का जो बपतिस्मा है उसको भी रिजेक्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि उसने पहले कुरिन्थियों 1 में ये पढ़ा कि पौलुस ने कहा कि पौलुस ने तो पहला कुरिन्थियों में ही लिख दिया कि खुदावन ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा बल्कि प्रचार करने के लिए भेजा, और जो दूसरा था जो एक सबसे बड़े डिनोमिनेशन का संस्थापक था उसने उस कलाम को पकड़ लिया और उसने अमाल दो को पकड़ लिया और ये कहा और सारे ईमानदारों के लिए, और उसने प्रेरितों के काम अमाल दो जहां पतरस ने कहा मन फिराओ और अपने अपने गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे। और तब खुदा के इस बंदे ने कि जितने भी बपतिस्मे हुए थे वो सभी, तो उसने सोचा कि जिनका जिनका बपतिस्मा होता है उनको तो पवित्र आत्मा मिल जाता है, और इस डिनोमिनेशन में आज ये चल रहा है कोई प्रेयर मीटिंग और वो और बपतिस्मे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में कोई प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि वो तो ये जानते हैं जब पानी का बपतिस्मा हुआ तभी पवित्र आत्मा मिल गया। मैं सारी उन शिक्षाओं के बारे में इस वक्त नहीं बताना चाहता जो बाइबल के अनुसार बाइबल के कायदे के अनुसार नहीं है, पर ये कितना दुख पहुंचता है, कितनी ठेस पहुंचती है कि इतने बड़े बड़े जो प्रभु के जाने जाने वाले लोग थे वो उन्होंने भी पवित्र वचन को और इस कलाम को नहीं समझा और उसको उन्होंने ट्रिनिटी के फॉर्मूला के अंदर लोगों को बपतिस्मे दिए, जबकि कोई भी एक बपतिस्मा इस फॉर्मूले में नहीं दिया गया, और रसूलों को पता था कि खुदावंद ने अपने आप को हमारी नजात के लिए हमारे उद्धार के लिए जाहिर किया अपने इकलौते बेटे के रूप में और कलीसिया में और पवित्र आत्मा के द्वारा पाक रूह के द्वारा, और उनको ये पता था जब हमारे खुदावंद ने कहा जब उसने मत्ती 28 और उसने कहा जाकर उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और इसलिए और उन्होंने चाहे वो पतरस हो चाहे वो फिलिपोस हो चाहे वो पौलुस हो उन्होंने जो बपतिस्मे दिए वो खुदावन यीशु मसीह के नाम में दिए। ये जो बाइबल की शिक्षा है तालीम है ये बार बार बताने की जरूरत पड़ती है, और ये बताने की जरूरत पड़ती है कि हम सब जिनको बपतिस्मा जिन्होंने बपतिस्मे लिया और उस ट्रिनिटी के फार्मूले में बपतिस्मा लिया उनका बपतिस्मा गलत है, उनको खुदावन के सामने इसका इकरार करने की जरूरत है कि मैंने गलत बपतिस्मा लिया, और उनको अपने आप में सुधार करके जो रसूलों की शिक्षा है जो प्रेरितों की शिक्षा है उसमें वापस आने की जरूरत है कलाम के अनुसार, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में गोते का बपतिस्मा लेकर। भाइयों और बहनों ये कहना जरूरी बहुत हो जाता है और बड़ी गंभीरता से बड़ी संजीदगी और सफाई के साथ ये कहना जरूरी हो जाता है कि हम एक ऐसे समय में ऐसे वक्त में रह रहे हैं जब प्रभु अपनी सारी चीजों को बहाल करके तरतीब से अपने कलाम के हिसाब से चला रहा है बना रहा है जैसे कि शुरुआत में थी। हमारा प्रभु यीशु जो है वो इंतजार में है, वो आसमानों में इंतजार में है जब तक के वो बहाली कलीसिया में ना आ जाए जैसे शुरुआत में थी, ईमान में डॉक्ट्रिन में शिक्षा में हर चीज के बारे में। जैसा कि कलीसिया के लिए निर्धारित किया गया था, जैसा के लिए हमारे लिए कलाम में बताया गया था। हम पढ़ते हैं, हम इब्रानियों चार एक को हम पढ़ते हैं। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, उससे महरूम रह जाए। और ये जो कलाम है, हमें अपने दिल से लगा कर रखना है कि हम में से कोई, मेरे भाई और बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कोई पीछे रह जाए, बाकी रह जाए, महरूम रह जाए जब हमारा प्रभु आता है। मैं फिर बार बार कहता हूं कि ईमान और अमाल, यानी विश्वास और उसका उनका मानना, उसके काम, वो हमें बाइबल के अनुसार मानना जरूरी है, और हमें विश्वास बाइबल के हिसाब से करना है, और बपतिस्मा बाइबल के अनुसार करना है, कलाम के अनुसार करना है, जैसा कि कलाम शिक्षा देता है, जैसे कि खुदा के लोग ने, खुदा के जन ने कहा कि हम में से कहीं एक, जैसे वो कह रहा है, ऐसा ना हो कि हम में से कोई बाहर हो जाए और पीछे छोड़ दिया जाए, और जो, और देखिए जो मत्ती 25 में जो कहा गया, जो कहा जाता है, जहां कहा गया जो तैयार थे, जिन्होंने अपने आप को तैयारी बख्शी, वही उस भोज में गए, उस वेडिंग सफर में गए, उसके बाद दरवाजे बंद हो गए, और जो तैयार नहीं थे, जब वो आए वापस और उन्होंने उस दरवाजे को जो बंद हो गया था उस पर दस्तक दी और खटखटाया, अब देखिए आज तो प्रभु हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा है, दस्तक दे रहा है और कह रहा है, और हमारे दरवाजे पे कह रहा है, और जो उसके लिए दरवाजा खोलता है, अपने दिल का दरवाजा खोलता है, प्रभु वहां पर आता है और हमारे अंदर वो वास करता है, हमारे अंदर आकर रहता है। ये कितना गंभीर, कितनी संजीदा बात है कि किस तरीके से हमको समझाया गया इस पाक कलाम के बारे में, कि पाक कलाम में समझाया गया। हम ये कह सकें, ये बात कहना चाहते हैं, हम यहाँ ज्यूरिख से कहना चाहते हैं, जो इस शहर में जहाँ भाई ब्रैनम ने प्रचार किया था, जहाँ पर खुदावन ने बड़े बड़े काम किए, हम एक बार फिर कहना चाहते हैं यहाँ से कि आप में से कोई, मेरे भाई और बहनों, ऐसा ना हो कि आप में से कोई, सारे संसार में जो पाए जाते हैं लोग, कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं और शामिल ना किए जाएं, पर हम सब तौबा में आएं और हम खुदावंद के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बाइबल के अनुसार आत्मिक रूप से बपतिस्मा ले सकें, और सब कुछ जो है उस तरतीब में किया जाए जैसा कि कलाम में लिखा है, जिससे कि प्रभु वापस आए एक दूल्हे के रूप में और अपने तैयार की हुई दुल्हन को अपने साथ घर ले जाए। अब आगे पढ़ते हैं, इब्रानियों 3:12। हे भाइयों, चौकस रहो, खबरदार रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर यानी खुदावन से दूर हटा कर ले जाए। चौकस रहो, खबरदार रहो। क्या हम देख सकते हैं कि कितनी संजीदगी से ये पाक कलाम बताया जा रहा है, ये पाक कलाम किस तरीके से संजीदगी से गंभीरता से बता रहा है कि हमें ऐसा ना हो कि कोई ऐसा गैर जो 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 हमें अविश्वास यानी जो हमें गैर ईमानदार बना दे, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए और जिससे कि हम खुदावन से दूर हो जाएं। हम विश्वासी हैं, हम ईमानदार हैं और हमारा चुनाव इसलिए किया गया है कि हम ईमान रखें उस पर जो खुदा के कलाम में लिखा गया है। और हमारे खुदावन ने कहा जो मुझ में ईमान रखता है जैसा कि कलाम कहता है उसके जिस्म से उसके शरीर से उसके बदन से एक सोता फूटेगा जो हमेशा की जिंदगी के पानी का सोता होगा जो कभी खत्म ना होगा। और हमारे अंदर कोई संदेश ना हो, कोई डाउट ना हो, बल्कि हमारे अंदर संपूर्ण कामिल ईमान हो, कामिल ईमानदारी हो, कामिल हुक्म मानना हो और हम आज्ञाकारी बने जिससे कि हम तैयार हो सकें, हम प्रभु के आमद के लिए तैयार किए जाएं। हम पढ़ते हैं आगे दूसरा करिन्थियों 6:17-18। दूसरा करिन्थियों 6:17-18। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, आमीन। एक बार फिर हम देख रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी आज्ञा, कितनी बड़ी सलाह यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर हमें सावधान किया जा रहा है कि उन गलत शिक्षाओं में से बाहर आ जाओ, उन चर्चेज में से बाहर आ जाओ, उन धर्मों में से बाहर आ जाओ, उन सब में से बाहर आ जाओ जो के खुदावन के वचन से मेल नहीं खाते। इसको बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी से लें, बहुत दिल से लें, क्योंकि यहाँ लिखा है कि मेरे लोगों, जो उसके लोग हैं उनसे कह रहा है, जो उसके खून खरीदे लोग हैं, जिनको मैंने चुनाव, जिनको मैंने बिना आलम से पेश कर दुनिया बनाने से पहले से चुन के लिया, और अपने आप को अलग कर लो, कोई गंदी चीज, गलत चीज को मत छुओ, और जो कलाम के मुताबिक नहीं है उसको मत छुओ, अपने आप को अलग करो और कलाम के अनुसार अपने आप को तैयार करो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब मैं तुम्हें रिसीव करूंगा, तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हम खुदावन के हुक्मों पर चलने वाले ईमानदार बेटे और बेटियां बने। और ये जो कलाम है की बातें हैं, इनको अपने दिल में लगा कर रखें और हम कहें हे प्रभु तू मुझसे बात कर, तू मुझसे डायरेक्ट बात कर अपने वचन से, और मैं और मुझे इन चीजों से बाहर निकाल ला, मुझे अपने आप को अलग करना है, अपने आप को बचा कर रखना है। और ये कलाम जो है ये मेरे लिए यानी स्वयं मेरे लिए लिखा गया है। और खुदावन ये कहता है और उसने कहा, उसने अपने कलाम में इस बात को कहा। और ये जो बात हमने सुनी और पढ़ी, ये हर एक को व्यक्तिगत रूप से शख्सी तौर पर खुदा का कलाम एड्रेस करता है कि हम पर जो हम खुदा के लोग तो हैं, उसके जन तो हैं, पर हम शख्सी तौर पे एक एक इंसान जो है हम सबको ये कहा गया, हम ये ऐसी आज्ञा दी गई कि हमें इन गलत चीजों में से निकल कर आना है, व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग निकल कर आना है। और खुदावंद के कलाम के अनुसार, उसके अद्भुत कलाम के द्वारा हम फिर पढ़ते हैं आगे इफिसियों 6:11-17 एक बार फिर पढ़ते हैं। इफिसियों 6:11-17 परमेश्वर के हथियार बांध लो और तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। 17वें आयत में लिखा है, उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हम इस कलाम को ले लें जो पहले पढ़ा गया, भाई बाब गातना के द्वारा पढ़ा गया शुरू में, एक बार फिर इस बात को हम समझ ले और हम एक बार फिर इस बात को का इकरार करें, इस बात को समझें, एक बार फिर पढ़ें सच्चे मन से इस कलाम को, के सारे हथियार जो खुदावंद के वचन के हैं उनको बांध लो, ये हमारे खुदावंद ने कहा। हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम यानी कि अमाल पहले बाब में वहां लिखा है, यरूशलेम में बने रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक के तुम आसमानों से उस सामर्थ को, उस कुवत को हासिल ना कर लो। खुदावन ने हमसे वादा किया है, वाचा बांधी है और कि हमको ये सामर्थ, ये शक्ति, ये पावर मिलने वाली है, ये जो पाक रूह की का कुवत है ये हमको मिलने वाली है, जिससे कि हम शैतान के उन बातों का सामना कर सकें, शैतान के जो कि शैतान हमारे खिलाफ लेकर आता है हम उनका सामना कर सकें। ये मेरे लिए बड़ा आसान नहीं है कि इन सारी बातों के बारे में बोल सकूं, पर ये कहना जरूरी हो जाता है। हम इतने करीब पहुंच चुके हैं, खुदावंद के आने के इतने करीब हो चुके हैं कि हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में क्या चल रहा है और किस तरीके से बाइबल की नबूवतें और बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं और किस तरीके से लोग इन सारी चीजों को देख रहे हैं और लोग बड़े उत्सुकता से, बड़े ख्वाहिशमंद होकर के सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है इस दुनिया में। पर हम जानते हैं कि हम तो अंत समय के अंत में, आखिरियत में पहुंच चुके हैं और ये जो कलाम है जो उसने, खुदा ने भाई बैनम को दिया, ये वही संदेश है, ये वही कलाम है जो पतरस के पास आया, जो यहुन्ना के पास आया, जो पौलुस के पास आया, और यही कलाम, यही शिक्षा। और तब और खुदा ने इस बात को कंफर्म किया, अपने वचन को हमारे ऊपर में कामिल किया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब यहाँ लिखा गया है, जब यहाँ लिखा गया कि आत्मा की तलवार ले लो, देखिए यहाँ पर मैं बड़े खास तौर पे सोच रहा हूँ, मैं 31 दिसंबर 1965 की बात को देख सोच रहा हूँ। हम एक प्रेयर मीटिंग में थे, सभा में थे और एकदम और तब इस खुदावन का कलाम आया और उसने कहा खुदावन के कलाम ने कहा, मेरे सेवक मैंने अपनी तलवार को तेरे हाथ में रखा है। और हमें पता है कि ये तलवार क्या है, ये तो खुदा का कलाम है। और खुदावन ने कहा, और खुदावन ने सच यकीनन मुझे इस बात के लिए कि नहीं मैं कहानियां और किस्से सुनाऊं, बल्कि मैं खुदावन के खालिस कलाम को भेजूं, खालिस कलाम के लिए मुझे बुलाया गया, जिससे मैं जो 2 अप्रैल 1962 को जो मुझे बुलाया गया, उसने कहा हे मेरे खादिम, मेरे सेवक, तेरा समय इस शहर के लिए जल्द ही पूरा हो जाएगा और मैं तुझे दूसरे शहरों में भेजूंगा कि वहां जाकर तू मेरे वचन का प्रचार करेगा। और आप सब जानते हैं कि इस गवाही को आप जानते हैं, ये बार बार कहने की पूरी जरूरत नहीं है, पर फिर ये जो आत्मिक भोजन है, ये जो बांटा गया है, ये भी बहुत जरूरी है। एक और एक बार खत्म करने से पहले मत्ती चार चार को हम पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती चार चार को हम पढ़ रहे हैं, मत्ती चार और चार। उसने कहा, ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती चार चार में ये लिखा है, उससे जिंदा रहेगा। आमीन। इससे के पहले हम 45 से 47 आयत को पढ़ें मत्ती 24 में, मैं कहना चाहूंगा, जब ऐसा लिखा है कि खुदावन का कलाम, तब हमारे पास उसको इज्जत देनी है, हमने उसको इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। तब खुदावन हमें बहुत धन्यवाद करना अपने अपने मन की गहराइयों से कि उसने हमें वो वादे दिए। और आमोस 6:11 जहां लिखा है कि उस वो लोगों के मन में एक वैसी भूख, एक तड़पन भेजेगा जिससे कि वो पाक कलाम को सुनना चाहें। और फिर और खुदावन ने अपने लिखे हुए कलाम को हमारे सामने हमारे लिए अपना मुकाशफा दिया हुआ कलाम बना दिया और रिवील्ड वर्ड बना दिया। और यही हमारा आत्मिक भोजन है, हमारी रूहानी खुराक है, क्योंकि इस तरीके से ही खुदावन ने इसके ऊपर जोर देकर कहा। हम एक बार फिर पढ़ेंगे मत्ती 24 और उसकी 45 आयत। अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो कि उस भोजन को हमें दिया जाए जो मुकाशवा का कलाम है, जो हम पर खोला गया, खुलासा किया हुआ कलाम है, जो अपने नबी के द्वारा खुदा ने किया। और उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम ने कहा कि ये वो भोजन है, ये वो कलाम है, ये वो फूड है। और मेरे पास 1100 सरमन हैं जो भाई ब्रैनम के हैं, वो टेप्स पर जो मेरे ऑफिस में हैं, मौजूद हैं। और खुदा ने भाई ब्रैनम को इस्तेमाल किया उन सारी चीजों को खोलने के, खुलासा करने के लिए, जो बाइबल के सारे सब्जेक्ट है उनके बारे में। खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार है कि 1946 से लेकर उनके जो सरमन थे, उनके सरमन रिकॉर्ड किए गए और वो सभी के द्वारा सुने जा सकते हैं। और खुदावन ऐसा होने दिया कि उसने खुदावन ने ऐसा होने दिया जैसा कि उसने बताया। और उसने पतरस को दिया और पौलुस को दिया, ऐसे ही भाई ब्रैनम को दिया, ये खास खालिस पाक कलाम जो उनके ऊपर खोला गया और मैं उसी कलाम को लेकर के सारी दुनिया में ले जा सका, कम से कम 50 साल से भी ऊपर। और अब हमारे पर खुदावन का फजल है कि हमें इन पुराने जो सरमंस हैं, जो पुराने प्रचार के हैं, चाहे वो ब्रदर भाई ब्रैनम के उन 60 के दशक के हैं और मेरे 80s के हैं, सारे संसार में उनको सुना जा सकता है। और खास तौर पर हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावन हमारे लिए भला है, हमारे लिए भलाई पैदा करता है। और जो आखिरी और जो बुलावट का जो आखिरी और सुधार का और अपने आप वापस बहाली का जो ये मैसेज है कलीसिया में जो काम होने, ये सब कुछ एक तरतीब से लगाया जा चुका है और हमारे हमारे जीवन में ऐसा हो चुका है। और फिर जो जवान लोग हैं, जो युवक लोग हैं, और उनके भी अपने अपने जिंदगी के जो सल्वेशन के उनके अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस है उनके बदलाव के, उनके और उनके नए जिंदगी के और उनके नए नई पैदाइश के और पवित्र आत्मा के जो उनके अनुभव हैं, ये सब आज वापस बहाल किए गए हैं बाइबल के पुराने कलीसिया, बाइबल की पुरानी शिक्षा के अनुसार। और जो खुदावन की वादों को और ईमान रखते हैं जो कि इस समय के लिए हैं, वो उनका अनुभव भी करेंगे, उनको पा भी लेंगे, उनकी जिंदगी में वो हकीकत बन के अनुभव भी होंगे, एक्सपीरियंस भी होंगे, और खुदावन हमारा जो है वो हमारे उद्धार के काम को पूरा करेगा। पर खुदावन खुद अपने उद्धार के काम को पूरा करेगा। और जो उसके उद्धार पाए लोग हैं, जो आज ईमान रखते हैं सच्चे दिल से कि आत्मा रूह जो है वो कलीसियाओं से क्या कहता है, और खुदावन एक बड़े सामर्थी और बड़े पावरफुल आत्मा के काम को नाजिल करेगा, जाहिर करेगा, जैसे कि जिस तरीके से पाक रूह वहां उतरा था और जहां आसमान से बड़े शोर के साथ पेंतिकोस के दिन उतरा था और 2000 साल पहले उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का एक माइटी काम, एक सामर्थी काम, एक कुवत वाला काम उन लोगों में जो चुने हुए लोग हैं, जो ब्राइड कह रहे हैं, जो प्रभु की ब्राइड है, उनके बीच में ये काम नाजिल होगा और वे सारी चीजों का अनुभव करेंगे जो खुदावन ने वादा किया है। और वो उसके हकदार होंगे जो कि तब वो इस बात के हकदार होंगे जब यीशु आता है तो उनके उसके साथ होंगे। और फिर हकीकत में वो जल्दी आने वाला है और जो खुदावन में सोए हुए हैं वो पहले उठेंगे, जी उठेंगे, और जो बचे हुए हम होंगे, हम उसके साथ प्रभु के साथ एक साथ मिल जाएंगे और उठाए जाएंगे। जिन्होंने आज इस बात को सुना है और जो बार बार फिर सुनेंगे, प्लीज आप और जो सेवा करने वाले भाई हैं, ये सिर्फ इन बातों को जो खुदावन ने हमारे जो हमारे को इस कलाम में खुदावन ने बताया, इसके बारे में हम प्रचार करें, इसके बारे में बताएं। आप सब आशीष पाएं, आप सब ब्लेस्ड हों, और सब जहां चाहे आप दो या दो तीन में इकट्ठे हैं, और जो कि मुझे जहां पर 4000 लोग भी इकट्ठे होते हैं, चाहे हम कहीं भी हों, चाहे कितने भी हों, हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि वो वफादार है उसके फजल के लिए और खुदावन मेमने के खून के लिए और उस कलाम के लिए और पाक रूह के लिए, उन सब पर जो खुदावन ने हमको दिया और इस वक्त के लिए दिया, उसी प्रभु को सारी महिमा और सादर हमेशा के लिए मिले। आमीन, हालेलुया।
जी।